وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اور عداوت کا بھی اعلان کر رہی ہے کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ کتنا پریشان کر سکتے ہیں, کتنی اذیتیں دے. بے پرواہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا. اور جہاں تک ان اندیشوں کا تعلق تھا کہ نہ جانے یہ اکثریت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے, تو اس کو اپنے پروردگار سے رجوع کر کے پیر کہہ دیا, ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر, کہ اللہ ہم تو بھروسہ ہمارا آپ پر ہے اور جو کچھ بھی ہوگا تو ہم آپ ہی سے رجوع کریں گے اور ہمارے دل آپ کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے لیکن آخری ٹھکانہ آپ کے پاس ہے, الیک المصیر. تو یہ تو ارادہ, اپنے ارادے کا اظہار ہے. تین ارادے کہ ہم, اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ بالآخر ہمیں آپ کے پاس پہنچنا ہے. اس میں کوئی دعا نہیں ہے, یہ اپنے عقیدے کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور اپنے قلبی کیفیت کا اظہار ہے کہ اللہ ہم نے ان سے دشمنی ٹھان لی ہے لیکن توکل ہمارا آپ کے اوپر ہے اور رجوع کریں گے تو آپ ہی سے کریں گے. اب آگے دعا فرمائی, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. پہلے یہ اقرار کر لیا کہ یہ سارے اندیشے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان میں ہمارا بھروسہ آپ پر ہے, اور ان اندیشوں کی وجہ سے ہم کوئی اور کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے مدد لینے کے لیے بلکہ آپ ہی سے رجوع کریں گے. یہ پہلے اقرار کر لیا اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کی پختگی کا, اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا, اس کی طرف رجوع کرنے کا. اس کے بعد مانگا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, کیا ہمارے پروردگار ہمیں, یہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے, ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنائیے. فتنہ کیا؟ کہ یہ ہمیں پریشان کریں, ہمیں اذیتیں دیں, ہمیں تکلیف پہنچائیں. تو ایسا نہ بنائیے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں ہتھیار ڈال دیں ان کے آگے, کیونکہ ہم نے ارادہ تو کر لیا کہ توکل آپ پر ہی ہوگا, رجوع آپ سے ہی ہوگا. لیکن یہ ارادہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. آپ پر تو بھروسہ ہے لیکن اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی صورت ایسی پیش آ جائے کہ جو ہمیں برداشت سے باہر ہو جائے اور ہم کہیں پھسل نہ جائیں. تو ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے, ایسا آزمائش کا سبب نہ بنائیے کہ جس میں ہمیں پھسلنے کا اندیشہ ہو. نے اقرار بھی کر لے, اعتراف بھی کر لے اور یہ ارادہ بھی ظاہر کر دے کہ میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا. مثلا توبہ ہے, توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کہ آئندہ نہیں کروں, فوری طور سے گناہ کا چھوڑ دینا, ندامت, ماضی پر ندامت اور آئندہ مستقبل کے لیے عزم پکا, कि नहीं जाऊंगा, इस बिना के पास नहीं जाऊंगा। अब जब बंदा ये अजम कर लेता है तौबा के वक्त में, तो फिर बंदगी का तकाजा यह है कि साथ ही वो परवरदिगार को पुकारे, यानी या अल्लाह मैंने कर तो लिया, मैं नादिम भी हूँ, फौरन वक्त छोड़ भी दिया, आइंदा के लिए इरादा भी कर लिया कि नहीं नहीं करो करीब नहीं जाऊंगा, लेकिन इस इरादे में मैं अपने मुझे अपने इस इरादे पर भरोसा नहीं, पता नहीं ये इरादे पर कायम रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगा, तो उसका उसलिए मैं आप ही से इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह मुझे इस इरादे पर इस्तेकाम भी अता फरमा दे, इस पर मुझे साबित कदमी भी अता फरमा दे, इस पर मुझे इस्तकामत भी दे दे। तो बंदगी यह है कि अपने करने का जो काम था वो तो कर ले और फिर अल्लाह तबारक बताला से मांगे कि अल्लाह मैंने ये तो कर लिया लेकिन अब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा हमने आप पर कर लिया, रुजू भी आपसे कर लिया लेकिन भरोसा मुझे अपने ऊपर नहीं है, लिहाजा ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से मुझे फितना ना बनाइएगा इन काफिरों का। तो तौबा में भी यही करना है कि या अल्लाह मुझे फिर दोबारा इस गुनाह में मुबतला होने से बचाइएगा, मुझे इस इरादे में साबित कदमी अता फरमा दीजिएगा। तो अब यहाँ अगरचे अपना इरादा जाहिर कर लिया कि हमें अब किसी से डर नहीं है, आप ही पर भरोसा है, आप ही से रुजू करेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे हालात पेश आए, वो फितना जो हमें पेश आने वाला है वो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और उसके नतीजे में खुदा ना करे हम कहीं फिसल जाएं, तो रब्बना ला तजअलना फी तदल्लज़ीना कफर, ए अल्लाह फिर आप ही ऐसा कीजिए कि हमें काफिरों के लिए फितना ना बनाइए, फितना के माना है आजमाइश में ना डालिएगा हमें ऐसी आजमाइश में जिसमें हमारे लिए पूरा करना उसका मुश्किल हो जाए। वग़फिर लना रब्बना, और अल्लाह अगर उस सूरत में हमसे कुछ गलती हो भी जाए तो फिर माफ़ भी कर दीजिए, जब कैसे हालात पेश आ जाएं उसमें हम कहीं फिसल जाएं कुछ गिर जाएं तो हम पहले से आपसे मगफिरत मांगते हैं, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो सारी बंदगी का आला तरीन मेयार इस दुआ में और इन अल्फाज में इन कलिमात में मौजूद है, अपनी तरफ से इरादे का इजहार भी है, इस्तकामत भी है, गैरुल्लाह का खौफ के खौफ से बरात भी है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा अल्लाह पर है और अल्लाह से मांगना है। तो हमारे साथ जो ये हालात पेश आते हैं वो दरहकीकत इसी बंदगी के मुतकाजी हैं। ये दुनिया जो है ना ये हमारे लिए एक मारका है, एक कारजार है, इसमें बंदे की जंग है नफ्स से और शैतान से। जब उसने पहले कह लिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, ये कह दिया तो इकरार कर लिया कि अब मेरी जिंदगी जो कुछ गुजरेगी वो अल्लाह की इताअत में गुजरेगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि मैंने अपना रसूल अपना पैगंबर उनको मान लिया, मुक्तदा उनको मान लिया। तो ये इकरार तो है लेकिन इसके बाद मारका है, इस इकरार के ऊपर साबित कदम रहने के लिए रास्ते में अल्लाह ताला ने कुछ आजमाइशें भी रखी हैं और वो आजमाइशें क्या हैं, नफ्स और शैतान की शक्ल में आती हैं। अब उन आजमाइशों के अंदर आदमी साबित कदम रहे ये इसके लिए अल्लाह ताला से मांगने और मांगते रहने की ज़रूरत होती है, मांगे भी और मांगता रहे हमेशा। ये अजीब लफ्ज है फितना, ये कुरान करीम में बहुत सी जगह आया है और बड़ा अजीब जामे और आम किस्म का लफ्ज है। असल में फितना जो है अरबी में असली लुगत के माना में इसके माना होते हैं किसी चीज को आग पर तपाना, इसके उसके खरा खोटा होने की इम्तिहान के लिए किसी चीज को आग पर तपाना। जैसे मसलन सोना है, चांदी है या लोहा है, जो भी चीज है उसकी असलियत मालूम करने के लिए उस पर आग पर तपाया जाता है, तो उसको कहते हैं फताना यफ्तिनु, असल में अरबी जबान के अंदर लुगत में असल लुगत। फिर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि वो तपाना किस लिए होता है, आजमाइश के लिए, आजमाने के लिए, तो हर किस्म की आजमाइश के लिए फितने का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब ये जो पूरी जिंदगी है वो देखा जाए तो ये क्या है, ये आजमाइश है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये सब फितना है। फितना होने के माना उर्दू में अगर कोई कहे भाई फितना है तो उसके माना ये निकलेंगे कि वो कोई शैतान है, कुछ यानी बहुत बहुत बुरी चीज़ है। तो अगर उर्दू में तर्जमा इस कर ये यूँ कर दें कि तुम्हारे अम्बाल और तुम्हारी औलाद फितना है, तो उसका मतलब है कि आम हुक्म लगा दिया कि कोई माल का कोई हिस्सा भी हो वो बुरा है, औलाद जो है वो बुरी है। तो ये माना नहीं है, माना ये है कि माल और औलाद तुम्हारी आजमाइश है। आजमाइश है, क्या आजमाइश है, कि इसको हासिल करने के लिए, इसको सर्व करने के लिए जो तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं, नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, उन तरीकों के मुताबिक इनको चलते हो उन पर या उनसे हट जाते हो। माल जो है इंसान के पास तो वो फितना है, क्या माना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये माल की मोहब्बत तुम्हें डगमगा दे, गुनाह पर आमादा कर दे। माल जो है वो इंसान की जिंदगी के लिए ज़रूरी भी है, अगर इंसान के पास माल ना हो, पैसे ही ना हो, सरे से फक्र हो, फाका हो, जिंदगी कैसे गुजरे, लिहाजा माल ज़रूरी भी, लेकिन साथ इतनी मोहब्बत माल की जिसके ज़रिए इंसान अपनी हाजात को पूरा कर सके, ये मोहब्बत मज़मूम भी नहीं, नाजायज़ भी नहीं। लेकिन लेकिन फितना इस लिहाज से है कि उस माल की वजह से आदमी अपने सही डगर से हट जाए, उस माल की मोहब्बत दिल में समा जाए, और दिल में समा जाने के नतीजे में इंसान का हर एकदम इसी तरफ चल रहा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे मिल जाएं, और उसके रास्ते में बाद वक़्त अल्लाह बचाए हलाल व हराम की तमीज़ ना हो। हलाल व हराम की तमीज़ तो है ही नागुज़ीर माल के बारे में, लेकिन एक और चीज़ है जो दरहकीकत इसमें हम लोग मुब्तला रहते हैं, उसको चाहे आप हराम न कहें, नाजायज न कहें, लेकिन है खतरनाक। वो क्या कि इन्हिमाक, दुनिया हासिल करने के लिए माल दौलत को ज्यादा से ज्यादा समेटने के लिए तबीयत हर वक्त इस तरफ लगी रहे, इन्हिमाक इसमें हो, मुझे कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, यहाँ तक के हदीस कुदसी है कि ये इब्ने आदम को अगर एक वादी सोने से भरी हुई मिल जाए तो चाहेगा कि दूसरी मिल जाए, और दूसरी मिल जाए तो चाहेगा कि तीसरी मिल जाए, और कितना अजीब जुमला फरमाया उसमें कि ला यमला उजौफ अपनी आदम इल्ला तुराब, इंसान का पेट सिवाय मट्टी के, कब्र की मट्टी के कोई और चीज नहीं बन सकती। तो ये इन्हमाक चाहे उस यानी इन्हमाक इस बात का कि बस हर वक्त दिमाग उसी तरफ लगा हुआ है, एक मेरी फैक्ट्री लग गई है लाओ भाई एक और लगा लूं, दूसरी लग गई है सर तीसरी लगा लूं, और दिमाग इसी तरफ चल रहा है और आखिरत की तरफ जहन या तो जाता नहीं या कम जाता है। अगरचे हराम काम नहीं कर रहा इंसान, हलाल तरीके से कर रहा है, हलाल तरीके से माल दौलत कमा रहा है, लेकिन फैसलों का दारोमदार सारा वो इस पर है कि इस माल में किस तरह इजाफा होगा। ये चीज भी रुकावट बन जाती है, ये आजमाइश बन जाती है और ये आदमी को बाद औकात आखिरत से गाफिल कर देती है। एमल दुनिया का बेकद्र बकाई कफीहा बामल आखिरत बेकद्र बकाई कफीहा, दुनिया के लिए इतना काम करो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए इतना काम करो जितना आखिरत में रहना। तो अब जो ये एक दौड़ लगी हुई है ना, चाहे हलाल तरीके से सही हराम न सही हलाल ही तरीके से, लेकिन बस हर वक्त दिमाग उस पर लगा हुआ है यार मेरी तनख्वाह इतनी है, अब कोई और देखें कहाँ से डबल इससे मिल जाएगी, मेरी आमदनी इतनी है कोई ऐसा जरिया तलाश करें कि जिससे इससे दोगुनी तिगुनी मिल जाए, दिमाग लगा हुआ है इस तरह। ये भी बिल आखिर अगर ये इसमें मुबालगा हो, इसमें ये सोच आगे बढ़ती रहे तो इंसान को ले जाके डूबेगी, डुबाएगी, डबो देगी कहीं ना कहीं। जब ये मोहब्बत होगी तो ऐसा होगा, अल्लाह बचाए सहाबा किराम के अंदर भी ऐसे वाकयात पेश आए कि एक सहाबी थे तो वो बेचारे बहुत गरीब थे और पकड़ पाके की ज़िंदगी गुजारते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगी कि कहिए या रसूलल्लाह मेरे हालात ख़राब हैं, मुझे दुआ फरमा दीजिए अल्लाह मियाँ मेरे मईशत में कुशादगी पैदा फरमा दी। आपने दुआ फरमा दी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अब माशाल्लाह उनके पास माल आने शुरू हो गया। तो उस ज़माने में जो माल होता था ना वो ज़्यादातर मवेशी होते थे, जितने जिसके पास ज़्यादा मवेशी है उतना ही वो उतना ही मालदार है, बकरियों का रेवड़ ऊँट वगैरह। तो अब इनके पास बकरियां हो गई आ गई, अभी बकरियों के चराने में लग गए, बकरियों को चराने में लगे तो वो बकरियां और बढ़ती चली गई। अब उनका इतना रेवड़ हो गया कि शहर में रहना मुश्किल हो गया, तो शहर से बाहर जाके एक बाड़ा बना लिया बकरियों का, उसमें रहने लगे, बकरियों के साथ मशगूल रहने लगे। शुरू में बावजूद इस बकरियों में मशगूल रहने के मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आ जाया करते थे। अब मशगूलियत इतनी बड़ी कि मस्जिद नबवी में आना फौत हो गया और ना जो है वो कम हो गया, और बड़ी तो बिल्कुल ही छूट गया। और अब वो हैं बकरियां हैं और गायें हैं और ऊंट हैं और जो उस ज़माने की दौलत है उसमें दिन रात गुजर रहे। यहाँ तक के जब नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सदका लेने के लिए ज़कात लेने के लिए कारिंदा पहुँचा, बाद रिवायत में है कि उमर गए थे वल्लाहु आलम, तो वो गए तो जाके कहा भाई इसकी ज़कात, मवेशियों के ऊपर ज़कात होती थी बकरियों पर गायों पर ऊँटों पर, तो कहा कि क्या ये मेरे ऊपर टैक्स आयद करते हो, क्यों दूँ मैं तुम्हें सब मेरी है क्यों दूँ, अल्लाह बचा अल्लाह ताला महफूज रखे। तो नतीजा ये है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला बुरे अंजाम से बचाए। उस माल की मोहब्बत ने ان کو بالآخر جا کر دبو دیا اور انجام خراب ہوا، اللہ بچائے۔ تو جب آدمی کا دل و دماغ ہر وقت اسی میں مصروف ہو کہ میں کیسے اپنی دولت بڑھاؤں، بھئی اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ بھئی میں، وہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی اتنا کرے کہ بھئی اپنا کھانا پینا صحیح ہو جائے، گھر بنانا ہے تو گھر جو ہے اس پر رہائش کے قابل ہو، رہائش کے قابل ہونے کے بعد اتنا بھی اجازت ہے کہ اس میں ذرا آسائش پیدا کر لو، یعنی رہائش پر آسائش، یعنی کچھ اس کو آرام دہ بنا لو عام جگہوں کے مقابلے میں، اور اس سے آگے بڑھ جاؤ تو آرائش بھی تھوڑی بہت، اس کی زینت بھی بنا دو جس سے اپنا دل خوش ہو، دوسروں کو کے اوپر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنا دل خوش کرنے کے لیے اگر آرائش بھی کر لی، یہ بھی جائز، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر آگے آ جاتے ہیں نمائش، کہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ جی کتنا بڑا آدمی ہے، بس یہاں آ کے آدمی جو ہے وہ گر جاتا ہے کھائی میں، نمائش کرنے میں لگ گیا۔ تو اس واسطے جو حلال چیز، میں حلال کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ بچائے حرام سے کم از کم وہ اللہ کے بندے جو مسجدوں میں آتے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو جن کا کچھ نہ کچھ دین سے تعلق ہے، وہ شرعی حرام تو بظاہر نہیں کریں گے کہ بھئی سود لے لیں یا جوا کھیلیں یا رشوت لیں یا دھوکہ دے کر مال لیں، یہ تو نہیں انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز جس میں مبتلا ہیں وہ ہے کہ حلال ہی ہے، لیکن اس حلال کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا جذبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ دن رات کی سوچ کا محور یہ بن گیا کہ کس طرح میں اپنے پیسے بڑھاؤں۔ اللہ نے اچھا خاصا آرام دے رکھا ہے، پیسے دے رکھا ہے، کھاتے پیتے ہو، اور اللہ نے رزق بھی فراوانی کے ساتھ دیا ہے، مگر اب یہ فکر ہے کہ اور ملے، اور کس طرح کماؤں۔ یہ دماغ کے اندر یہ چکی چلنا، یہ ہے فتنہ، اموالکم فتنہ۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے اہم خیال ہمارے دل میں دنیا کا نہ ہو کہ بھائی یہ دنیا میری بڑھ جائے، اکبر اہمنا ولا مبلغ علمنا، ہماری علم حاصل کرنے کا آخری سرحد جو ہے وہ یہ ہو کہ دنیا کس طرح زیادہ حاصل ہو جائے، ولا غایت رغبتنا، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا اس پر ہو کہ بھائی بس سارے شوق ساری امنگیں وہ دنیا ہی سے متعلق آ رہی ہیں، ایسا میرا بنگلہ بن جائے، ایسی میری کاریں ہو جائیں، ایسے میری دولت ہو جائے۔ یہ تو یہ کیا ہے، یہ مبلغ علم انسان کا اور رغبتیں اور شوق اور امنگیں ساری وہ اسی طرف ہو گئی۔ جب دنیا کی طرف ہو جاتی ہے تو کبھی یہ شوق ہوتا ہے، یہ امنگ ہوتی ہے کہ بھائی ہم فلاں کام کر لیں گے نیک تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں محل دے، جو قرآن نے جو نعمتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ان کا شوق ہوتا ہے، ان کے بارے میں کبھی سوچا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ایک جگہ قرآن کریم نے بتایا ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہم فی الغرفات ان آمنون، اور امن کے ساتھ ایسی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ بالا خانوں میں بیٹھے ہیں اور بے خوف ہیں ہر چیز سے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کبھی خوف پاس پھٹکے گا نہ کبھی غم آئے گا۔ یہ دنیا جو ہے نا ساری ان دو چیزوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو خوف نہ ہو، کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو، کھانا مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، لیکن اگر یہ خوف تو لگا ہوا ہے کہ یار زیادہ کھا لیا تو معدہ خراب ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ तो वो लज्जत के अंदर ये कांटा छुपा हुआ है खौफ का, और हुज़्न के पीछे जो कुछ गुजरा उसके ऊपर अफसोस, हाय ये कर लेता तो ये हो जाता, हाय ये कर लेता तो ये हो जाता। तो ये सारी दुनिया हमारी खौफ और हुज़्न में लिपटी हुई है। ये तसव्वुर करो उस आलम का कि जिसमें ना आइंदा का कोई खौफ है कि कोई दुश्मन चढ़ाएगा, कोई हमें पकड़ लेगा, कोई हमें हैजा हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाएगी, ना इसका खौफ और ना माजी पर कोई गम कि मैंने फला काम क्यों किया था। इस तसव्वुर से ज़रा सोचो कि ये कैफियत अगर पैदा हो जाए कि खौफ चला जाए और हुज़्न चला जाए, गम चला जाए, तो यहाँ दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते उसका पूरा। सिर्फ ये नेमत, अगर और नेमतें भी छोड़ दो, सिर्फ ये नेमत कि ना खौफ है ना हुज़्न है गम है, ये कहीं मैसर आएगी? तो कभी शौक इस किस्म का होता है दिल में पैदा? क्या उमंग इसकी पैदा होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का जिम्मेदार हूं जो अपना हक इसलिए छोड़ दे कि झगड़े से बचना चाहता है। तो कभी दिल में ख्याल आता है कि यार इतनी बड़ी जमानत, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मैं उसकी उस जिम्मेदारी को किस तरह, उस जिम्मेदारी के नतीजे में जो आपने जमानत ली है कि जन्नत के बीचों बीच घर में दिलवाऊंगा तुम्हें, उसका कभी शौक दिल में पैदा होता है कि ये मुझे मिल जाए? या ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आमाल के ऊपर जो बशारतें सुनाई हैं कि इस अमल से ये होगा, इस अमल से ये होगा, तो कभी उसका शौक होता है, उसकी उमंग होती है? सारे शौक और उमंगें रह गई हैं क्या कि मैं अभी जवान हूँ, जवान होने के बाद, जवान होने के नतीजे में कुछ पैसे और कर जाऊँ, कुछ और काम कर लूँ जिससे और पैसे मिल जाएँ, फिर और मिल जाएँ, आज मेरा घर एक छोटा सा बंगला है, अब ज़रा बड़ा हो जाए, आज मेरी गाड़ी जो है अल्टो है वो मर्सिडीज़ हो जाए, वो सारी तमन्नाएँ, आरजुएँ, शौक, उमंग वो सभी सर्फ लगी हुई है। तो ये चीज है जो फितना है। फितना सिर्फ इतना नहीं है कि हराम से बचो, फितना ये भी है कि अपनी सारी शौकें, सारा शौक और सारी उमंगें दुनिया से वाबस्ता कर लो और आखिरत को भूल जाओ जहां हमेशा रहना है। ये पता नहीं कि कल मौत आ जाए, कब्र में जाके मेरा क्या हाल क्या बनेगा, और अल्लाह ताला के सामने जब पेश होगा तो क्या होगा, उसका ध्यान नहीं, बस ध्यान लगा हुआ है इन्हीं की तरफ। तो अम्वाल को फरमाया कि ये फितना है, अम्वालुकुम। अदरा एक बात और इसमें सोचने की है कि अम्वालुकुम जब अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे माल, क्या माना? तुम्हारी मिल्कियत है वो माल, और मिल्कियत तभी होगी जबकि हलाल तरीके से हासिल हुआ हूं। मिल्कियत तो उसी वक्त आएगी ना, अगर सूद हो तो वो तुम्हारी मिल्क नहीं है क्योंकि हराम है, समझे ना। लेकिन अम्वालुकुम, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारे ही हैं, मिल्कियत तुम्हारी है, तुम्हारी मिल्कियत है, तो हलाल तरीके से हासिल हुई है। लेकिन फितना है। फितना क्या है कि अगर तुम इसी की उलट फेर में रह गए और उसके नतीजे में गाफिल हो गए, यह फितना है तुम्हारे लिए, आगे चलकर पता नहीं तुम्हें कहाँ जाके डबोएगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आप अंदर जेरे कश्ती पुश्ती अस्त, आप दर कश्ती हलाके कश्ती अस्त। वो फरमाते हैं कि इंसान की मिसाल जो है वो कश्ती की है और दुनिया की मिसाल पानी की है। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती ना, कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती, इसी तरह इंसान बगैर माल के नहीं चल सकता। लेकिन कश्ती पानी के कश्ती जो है पानी से चलती है उस वक्त तक जब तक वो पानी जो है उसके दाएं बाएं आगे पीछे नीचे रहे। तो क्या होगा, वो जो नीचे है पानी, आप अंदर जेरे कश्ती, कश्ती के नीचे जो पानी है वो पुश्ती अस्त वो उसको धक्का देता है आगे के लिए, चलाता है। लेकिन आप दर कश्ती, अगर वो पानी जो चारों तरफ है वो अंदर आ जाए, कश्ती के अंदर घुसाए, तो क्या होगा, हलाके कश्ती अस्त, तो कश्ती को बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा। तो दुनिया भी अगर तुम्हारे चारों तरफ रहे तो कुछ हर्ज नहीं, चारों तरफ है तुम्हारे, लेकिन दिल की कश्ती में ना दाखिल हो। दिल की कश्ती में दाखिल होने के माना यह कि अब मोहब्बत है तो माल की है, फिक्र है तो माल की है, शौक है तो माल का है, जब यहां घुस गया तो वो तबाह कर देगा आखिर में जाके, अल्लाह बचाए कहां पहुंचाएगा। तो इसलिए ये इस फिक्र में गलतां पहचान रहना, अगर गलतां पहचान रहने के बगैर अल्लाह ताला दे रहा है वो नेमत है उसकी, वो भी अल्लाह तबारक वाला की अता है, उसको उस पर शुक्र करना चाहिए। बगैर किसी गलतां पहचान रहे हुए, बगैर यानी उसमें जहन की सोच का उसको महवर बनाए बगैर अल्लाह ताला दे रहा है तो फिर आता है उसकी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नहाते नहाते ऊपर से सोने की तितलियां गिरनी शुरू हो गई, सोने के टुकड़े आसमान से बरसने शुरू हो गए, तो नहाना वहाना छोड़ के उसको पकड़ने लगे। तो अल्लाह तबारक वाला ने फरमाया कि अय्यूब, क्या तुम्हें अब तक हमने गनी नहीं किया, जो ये जो सोना गिर रहा है इससे तुम्हें बेनियाज नहीं किया, सब कुछ जो जरूरत की चीजें सबको दे, सब कुछ दे रखी है, अब भाग रहे हो उस सोने के पीछे। तो क्या जवाब दिया, पैगंबरी का जवाब हो सकता है, जवाब दिया कि या अल्लाह दे दिया तो आपने बहुत कुछ है उससे मैं, लेकिन जो आप खुद अता फरमाए उससे मुस्तगनी नहीं हो सकता मैं, जो आप खुद अता फरमाए मैं उससे मुस्तगनी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अता आपकी है, उससे मुस्तगनी होके बैठूं कि आप दे रहे हैं और मैं कहा मैं नहीं लेता, ये बंदगी के खिलाफ, इम्तिहान था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के, देखो क्या जवाब देते हैं, समझे। तो वो इसलिए नहीं लपक रहे थे कि वो सोना इतना सारा जमा करूंगा तो इससे कोठी बनाऊंगा, इससे बंगले बनाऊंगा, उससे माल दौलत जमा करूंगा, इसलिए नहीं, वो उनके पेशे नजर वो सोना नहीं था, सोना देने वाला हाथ था, कि वो कहां से आ रहा है, उससे मुस्तगनी नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला बगैर ये सोच का महवर बनाए हुए, मबलग इल्म बनाए हुए, अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है उसकी आता है, उसको भी बंदा जो है वो शौक से ले, लेकिन अपने सोच का महवर ये ना बनाए। ये माना है अम्वालुकुम फितना, तुम्हारे अम्वाल जो तुम्हारे ममलूक हैं, और ममलूक उसी वक्त होंगे जब हलाल तरीके से आए हों, तो हलाल माल भी फितना है। फितना होने के माना ये कि वो उसमें अगर तुम इतने मुनहमिक हो गए कि उसने इन्हमाक ने तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दिया तो ये तुम्हें डबो देगा, कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा और वो डबो देगा। तो अम्बाल इस तरह फितना है, औलाद फितना है, औलादुकुम फितना। औलाद फितना कैसे है कि अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत तो दिल में डाल दी है, अगर औलाद से मोहब्बत ना हो वो पले कैसे, अल्लाह ताला ने उसको पालने के लिए दिन में ऐसी मोहब्बत डाल दी है कि माँ बाप उसके लिए अपनी जान कुर्बाने को तैयार कर करने को तैयार हो जाते हैं, इतनी मोहब्बत। लेकिन इस मोहब्बत के नतीजे में अगर इंसान वो गाफिल हो जाए अपने फराइज़ से, अपने वाजिबात से और शरी तकाज़ों से, तो उस सूरत में ये तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस होगा। ये आजमाइश है। औलाद से कितनी मोहब्बत करते हो, इतनी करते हो कि जितनी अल्लाह ताला को मतलूब है, या इतनी करते हो कि जो तुम्हें अपने फराइज से गाफिल कर दे, तो ये फितना है इस लिहाज से। तो दुनिया में रहते हुए अपने माल और दौलत और अपने औलाद और अपने सारे अज़ा अक़रबा, इन सब के बारे में ये समझो एतदाल का रास्ता इख्तियार करो, ना तो उससे मुकम्मल एराज है और ना उसमें इतना इन्हिमाक है कि जो आखिरत से गाफिल कर दे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा हज़रत आयशा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते हैं तो कैसे रहते हैं, तो हज़रत आयशा फरमाती है कान यकूनु फ़ी मेहनत अहलिही, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ उनकी जो घर के काम होते हैं उसके अंदर मशगूल रहते थे, बकरी का दूध धो लिया, कपड़े धो लिए, खुद अपने जो है सर की में से जो अगर उसकी सफाई करनी है वो खुद सफाई कर ली, अपने कान यकुनु फी मेहनती अहली ही, अपने घर वालों के साथ घर के कामों में रहते थे। और फइज़ा नूदिया बिस्सलाह खरज इलस्सलाह, नमाज की जब आज़ान की आवाज़ आ जाती थी छोड़ के चले जाते थे। और बाद रिवायात में ये अल्फाज हैं कि मर्रा का अल्लम यारिफना, इस तरह उठ के चले जाते थे जैसे हमें पहचानते ही नहीं, इस तरह उठ के चले जाते थे कि जैसे हमें पहचानते ही नहीं थे। तो यह एतदाल, तवाजुन, घर वालों का इतना ख्याल हो रहा है कि भाई वो तनहा बेचारे मशक्कत ना उठाए, हम भी उनका साथ दे दें, हम उनके साथ तआवुन कर लें, यह सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब दीन का वक्त आ गया तो इस तरह हो गया जैसे कि पहचानते भी नहीं, तस्वीर वाला पर्दा लटका लिया, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने घर में दाखिल होने से इनकार कर दिया, चेहरा अनबर मुतग़य्यर हो गया। तो ये अपने घर वालों से मोहब्बत भी है, मोहब्बत भी इतनी है कि दुनिया में किसी को नहीं हो सकती, अपने अज़वाज से मोहब्बत जो रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, ऐसी मोहब्बत दुनिया में किसी को अपनी बीवी से नहीं हो सकती, इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल, इतना हुस्न सुलूक, उनकी दिलदारियाँ कोई कर नहीं सकता जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन साथ में ये समझ लिया कि भाई ये कई ताल्लुकात अल्लाह के साथ ताल्लुक में बीच में माने ना हो जाए, रुकावट ना बन जाए। रिश्तेदारियाँ, कुरान करीम कहता है कि आखिर में जाके तुम्हें रिश्तेदारियाँ काम नहीं आएंगी, कुछ कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारा अमल काम आएगा। तो लिहाजा ये एतदाल की राह रखना कि आदमी अल्लाह की दी हुई अता को शुक्र अदा करके इस्तेमाल भी करे और उस पर खुशी का भी इजहार करे, उस पर नेमत, उसको नेमत भी समझे, उसका शुक्र भी अदा करे, लेकिन उसमें खुद अपनी सोच का उसको दारोमदार और महवर ना बनाए। ये एतदाल की राह जो है ये किसी अल्लाह वाले की सोबत से नसीब होती है। कह तो दिया मैंने ज़बान से, लेकिन ये एतदाल कायम करना ये ऐसे ही नहीं आ जाता, किताब पढ़ने से नहीं आ जाता, ये अल्लाह वालों की सोबत से आता है। एक बुजुर्ग का वाकया हजरत ने बयान फरमाया है कि एक साहब थे, उन्होंने उन बुजुर्ग की शोहरत बहुत सुनी थी कि भाई बड़े पीर हैं, बड़े शेख हैं और बड़े लोगों की इसलाह होती है उनके पास जाकर। तो ये बड़े शौक के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुए और बैत करने के लिए और उनसे ताल्लुक कायम करने के लिए। जाके देखा तो वो तो तिजारत चल रही उनकी, माल आ रहा है और जा रहा है और तिजारत में लगे हुए। कहीं थोड़ी देर को बैठ जाते होंगे मजलिस में या कहीं, लेकिन ज्यादा वक्त जो है वो गुजर रहा है इसमें तिजारत में। अब ये जो पहुंचे कि यार हमने तो सुना था कि ये बड़े पहुंचे हुए वलीउल्लाह हैं और ये तो दिन रात इनकी ही तिजारत में सर्फ हो रहा है, दिमाग में ये ख्याल आ गया। तो वो बुजुर्ग जो थे बहरहाल गए थे इसलाह के लिए, तो चाहते थे कि कुछ वक्त गुजारे उनके साथ, तो रहते थे उनके साथ कुछ। तो एक दिन वो चहलकदमी के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो ये भी साथ हो गए। तो कहने लगे कि हजरत यूं दिल चाहता है कि किसी अल्लाह ताला मुझे आपकी माइयत में हज नसीब फरमा दे। तो कह रहे अच्छा दिल चाहता है क्या, तो चलो फिर बस चलते हैं। चलो अभी रवाना हो जाते, यही सड़क जा रही है। तो उन्होंने कहा हजरत मेरी एक चादर पड़ी वहां पर, वो मैं जरा उठा लाऊं खानका। तो उन्होंने कहा बंदा खुदा तुम्हारी एक चादर पड़ी, हमारा तो पूरा कारोबार पड़ा हुआ है वहां। तो ये बताया कि वो तेरे चादर तेरे लिए दुनिया है और ये कारोबार मेरे लिए दुनिया नहीं है। क्यों? इसलिए है कि तेरा गुजारा उस चादर के बगैर नहीं होगा और मेरा गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चलने को तैयार हूँ, चलो सीधे होता रहेगा, जो कुछ माल माल के साथ जो कुछ होना है हो जाएगा। तो क्या हासिल कि दुनिया वो है जो इंसान के दिल में घुस जाए और दिल से बाहर बाहर हो और दिल उधर लगा हुआ हो अल्लाह ताला की तरफ, तो वो दुनिया नहीं है, वो दुनिया नहीं है। तो ये फितने अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अम्बाल को बनाया, औलाद को बनाया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अनु के सामने कैसर और किसरा के खजाने ला के डाल दिए गए, सोना चांदी दुनिया भर की कीमती चीजें। तो देखा और देखकर लम्हे से दुआ की, या अल्लाह इस माल की मोहब्बत तो आपने हमारे दिल में डाली है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनल बनीन वल्क़नातीर अल-मुक़त्तरति मिनल ज़हबि वल-फ़िद्दति वल-अनआमि वल-हर्स। आपने खुद फरमाया कि हमने तुम्हें मोहब्बत दी है इसकी और इसको खुशनुमा बना दिया है तुम्हारे लिए सब चीज़ों को। तो या अल्लाह जितनी मोहब्बत आपको मतलूब है मुझसे तो हम मुस्तग़नी नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हमारे दिल में घुस कर और हमें तबाह आखिरत से गाफिल कर दें, बस यही मतलूब है कि आदमी दुनिया में रहे, दुनिया को बरते, लेकिन दुनिया उसके दिल में दाखिल ना हो। दुनिया में हूं, दुनिया का खरीदार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। मजदूर साहब फरमाते हैं। तो इस तरह आदमी गुजारे जिंदगी। एक बुजुर्ग का शेर है फारसी, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन, हरदम अंदर बक बको चक चकंद। ये जो अहले दुनिया काफिराने मुतलकन, हर दम अंदर बक बको दर चक चकन, यानी ये अहले लफ्जी तर्जमा यह है कि अहले दुनिया सारे जो हैं काफिर हैं और हर दम इसी बक बक चक चक में रहते हैं कि दुनिया किस तरह हासिल हो जाए, मतलब सोच इसी सोच में पड़े रहते हैं। अब ये जुमला कह देना कि सारे अहले दुनिया जो हैं काफिर हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त इश्काल हो गया पैदा फिक्री एतबार से कि भाई काफिर कह देना, कुफर का फतवा लगा देना अहले दुनिया के ऊपर, तो क्या सुभान अल्लाह। हज़रत हकीम उल उम्मत रसूलुल्लाह सिर्रहू से किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये तो गलत बात कह दी किसी ने, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन। तो हजरत ने फरमाया ये मुब्तदा मुअख्खर है, काफराने मुतलकन, ये काफराने मुतलक मुब्तदा है और अहले दुनिया खबर है, तो वो खबर मुकद्दम है और ये खबर ये मुब्तदा मुअख्खर है। क्या मतलब कि मतलब कहने का ये है कि अहले दुनिया है ही वो जो काफिर है, समझे, अहले दुनिया वही है जो काफिर है। एक मोमिन जो है वो उसको अहले दुनिया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया का दुनिया के बक बक चक चक में हर वक्त नहीं रहता, कुछ ना कुछ वक्त उसका आखिरत की तैयारी में गुजरता है, समझे ना। तो ये कहने के कैसा अजीब जवाब दिया कि ये अहले दुनिया काफिराने मुतलकन, ये मुफ्तदा मुअख्खर है, काफिराने मुतलक और अहले दुनिया जो है खबरें मुकद्दम है, यानी काफिराने मुतलक अहले दुनिया हस्तंत। काफिराने मुतलक वो जो होते हैं जो पक्के काफिर हों वो होते हैं असल में अहले दुनिया, समझे। बहरहाल ये एक लतीफा था, लेकिन हासिल यही है कि दुनिया में रहे आदमी और फिर दुनिया का इस तरह तलबगार ना हो कि हर वक्त उसके दिमाग पर इसकी सोच मुसल्लत रहे। अरे कभी ये भी तो सोच लो कि कब्र में जाना है, कभी ये भी तो सोच लो अल्लाह के सामने पेश होना है, कभी ये भी तो सोच लो कि अगर ईमान और अमल साले के साथ अल्लाह ताला ले गए दुनिया से तो कैसी नेमतें मिलेंगी, कैसे बागात होंगे, कैसे फल होंगे, कुल्ले मारुज़ी कुमिन समरत रिज़्क़न हैं कालू रुज़क़ना मिन कबल वतु भी मुतशाबिहा, कि जब भी कोई फल लाया जाएगा तो ये कहेंगे भाई ये तो हमने पहले भी देखा था, हमें पहले भी मिला था, लेकिन हकीकत में उसकी लज्जत उसका जो मज़ा है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो उन नेमतों और उन खुशियों का कभी ध्यान करके और कभी उसका शौक पैदा करके, उमंग पैदा करके, उन आमाल की उमंग पैदा हो जाए जो वहां ले जाने वाले हैं, जो वहां ले जाने वाले। और हकीकत में अगर देखा जाए तो सिर्फ गफलत है जो रास्ते में रुकावट हो रही है, सिर्फ गफलत। और ये गफलत टूट जाए, चलते फिरते इंसान का जो है जबान पर जिक्र हो, दिल में जिक्र हो, दिल में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा हो, दिल में अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा हो और तसव्वुर कर रहा हो कि ये मेरे जबान जो चल रही है ये मेरे लिए जन्नत का सामान फराहम कर रही, क्या मुश्किल है। चलते फिरते मुश्किल है, एक मुश्किल ये हो सकती है कि भाई आदमी आधा घंटा निकाले, पौन घंटा निकाले, वहाँ बैठ के जो है जिक्र करे, मुराकबा करे, जो कुछ ये करे ठीक है, वो भी करना चाहिए, लेकिन अगर उसका मौका नहीं मिलता तो चलते फिरते करने में क्या इश्काल है। ये दिमाग की रौ जो चल रही है ना हर वक्त दिमाग की रौ काहे की तरफ चल रही है, دنیا کی طرف، اس رو کا رخ بدلو، اس رو کا رخ بدل کر آخرت کی طرف کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں ان کا شوق پیدا کرو، تصور کرو کہ کیا عالم ہوگا، کبھی تصور کیا؟ تصور کرو کیا عالم ہوگا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہوگا ہر وقت، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. وہ صحابہ کرام جن کے حالات پڑھتے ہیں ان سے جا کے ملاقات ہوگی، ان وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں بھرا ہوا ہے ان کی زیارت ہوگی، ان سے ان کی باتیں سنیں گے، وہ اپنے زندگی کے حالات بیان کریں گے اور ہم سن رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جمعہ، ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کا تصور کرو کہ بھائی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ماں تک پہنچائیں گے. تو آدمی تصورات کی دنیا کو ذرا سا پلٹے، یہ تصورات جو ہے نا ان سے کسی وقت خالی نہیں ہے دماغ، ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال انسان کے دل میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا سا اس کے رخ بدل کے اس کو جنت کی طرف کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو، اور جو اعمال ان تک لے جانے والے ہیں ان کی طرف کر لو، تو پھر یہ جو فتنہ ہے بچ گئے تم اس فتنے سے، مال کے فتنے سے بھی بچ گئے، اولاد کے فتنے سے بھی بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعتدال کا راستہ بتایا ہے اس سے زیادہ، کذالک جعلناکم امتاً وسطاً، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ تمہارے پر ایسے احکام فرض کیے ہیں جو تم سے کیے نہ جائیں، نہ ایسی چیزوں کو منع کیا ہے کہ جس سے رکنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، بہت زیادہ مشقت ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، صرف وسعت کے مطابق تمہیں احکام دیا، بس اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ اور آخرت کی نعمتوں کا تصور کرتے جاؤ، اپنے اعمال کو بڑھاتے جاؤ، اعمال صالحہ میں اضافہ کرتے جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب بلائیں گے اپنے پاس، قبر میں جانا ہوگا تو انشاءاللہ قبر ساری گل و گلزار ہو جائے گی انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ www.darsquran.com